आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हिंदी और हम बात करेंगे सुखी राजकुमार। तो उसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर मोनिका कादियान जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
जी धन्यवाद। नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं। सुखी राजकुमार जो एक प्रतिमा है, जो जब जीवित था तब उसे अपनी प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके सुख दुख से वो बिल्कुल बेपरवाह था। लेकिन चूंकि जब वो प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हुआ, मृत होकर जब उसकी प्रतिमा लगी और तब उसने जाना कि उसके आसपास लोग कितने दुखी हैं, और तब उसमें मानवता का भाव जागा और इस मानवता के भाव को क्रियान्वित करने के लिए उसके पास एक गौरैया आ जाती है संयोगवश, और ये गौरैया उसकी सारी चिंताओं में कुछ चिंताएं जो थी उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। गौरैया जो है वो एक कलाकार का दुख दूर करती है, और उसके बाद राजकुमार उससे कहता है कि तुम मेरा एक काम और कर दो, और वो काम ये है कि नीचे गली में एक लड़की खड़ी है और उसका जो सामान है वो नाली में गिर गया है, और अगर उसका सामान चूंकि नाली में गिर गया है अब किसी काम का नहीं रहा है और अब वो खाली हाथ घर जाएगी, और वो जब खाली हाथ घर जाएगी तो उसका जो पिता है उसे बहुत मारेगा और उसके पैरों में जूते भी नहीं है, यानी वो बहुत गरीब है। और इस बात से भी पता चल रहा है उसकी गरीबी का कि उसका सिर जो है वो नंगा है, उसके ऊपर कोई किसी तरह का वस्त्र नहीं है, किस तरह का कह सकते हैं टोपी नहीं है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं पहना हुआ है। तो यहाँ पर राजकुमार फिर से इस गौरैया को अनुग्रह करता है, फिर से उसे कहता है कि तुम मेरी जो दूसरी आंख बची है ना उसे भी निकाल कर उसे दे दो, और इस तरह से ये लड़की जो है ये पिता की मार से बच जाएगी। लेकिन गौरैया जो पहले थोड़ी स्वार्थी थी, थोड़ी नटखट थी और कहीं न कहीं वो आत्म केंद्रित थी, वह गौरैया जो है ये राजकुमार के प्रति बहुत स्नेह उसे हो जाता है, और इसलिए उसमें जो समानुभूति राजकुमार के प्रति उत्पन्न होती है उसके कारण वो कहती है कि तुम कहो तो मैं आज रात भर और रुक जाऊं मगर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी। किस तरह से कोई मित्र अपने दूसरे मित्र की आंख निकालेगा, उसके बाद तो राजकुमार को कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो कहते हैं मगर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी, फिर तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे, यानी तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अभी कम से कम तुम्हें एक आंख से तो दिख रहा है, तब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखेगा। राजकुमार कहता है गौरैया प्यारी गौरैया मैं जो कुछ कहता हूं उसे करो। उसने यानी गौरैया ने उसकी आंख निकाल ली और रोती हुई लड़की के हाथ में वह नीलम रख दिया। वाह कैसा रंगीन कांच है। अब यहां पर उस लड़की की मासूमियत का आप अंदाजा लगाइए कि उसे ये नीलम इतना कीमती पत्थर जो है उसे क्या नजर आया कि रंगीन कांच है, ये उससे भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रही है। लड़की ने कहा और हंसकर घर की ओर भागी। गौरैया ने राजकुमार की आंख का जो नीलम था वो उस लड़की को दे दिया और गौरैया वापस आ गई। अब क्या बोली वो राजकुमार को, अब तुम अंधे हो इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यानी एक नेत्रहीन व्यक्ति के पास कोई तो इस तरह से कोई तो सहारा हो जो उसके लिए आंखों का काम करे। तो यहाँ पर गौरैया कहती है कि अब उसके जो सपने थे दूर देश जाने के, अपने मित्रों से मिलने के और वहां जाकर रहने के, इठलाने के, खुश होने के, अब उसने वो अपने सारे सपने त्याग दिए। अब कहती है कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं गौरैया अब तुम मिस्र देश को जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गौरैया ने कहा और उसके पैरों पर सिर रखकर सो गई। अगले दिन वे राजकुमार के कंधों पर बैठकर भांति भांति की कहानी सुनाने लगी। अब गौरैया राजकुमार के पास ही रहने लगी। लाल बगुलों की कहानी जो नील नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं और मौका पाते ही झपट कर सुनहली मछलियां चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। स्फिनिक्स की मूर्ति की कहानी जो रेगिस्तान में रहती है और सर्वज्ञ है। चंद्रमा की घाटियों के राजा की कहानी जो बड़े से संगमरमर की पूजा करता है। और उस हरे सांप की कहानी जो डालियों में लिपटा रहता है और 20 पुरोहित उसे दूध पिलाते हैं। यानी बहुत भांति भांति की कहानी, जहां भी उसने सुनी या उसने कोई इस तरह की कोई बात देखी, घटना देखी, तो उसे वो राजकुमार के साथ साझा करने लगी। प्यारी गौरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। जाओ, मेरे नगर को देखकर बताओ कि कहां क्या, कि वहां क्या हो रहा है। राजकुमार, जो पहले इस तरह की आश्चर्यजनक घटनाओं से बहुत रोमांचित होता था और अपने ही सुख दुख में लगा रहता था, अपने ही सुख में, दुख तो था ही नहीं, अपने ही सुख में मगन रहता था, उसी राजकुमार का हृदय परिवर्तन आप देखिए कि उसे इतनी सारी घटनाओं में कुछ भी रुचि उसे नहीं महसूस हुई। उसे लगा कि आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द, और इससे बड़ा ये दुख कैसे हो जाता है, किस तरह, क्यों लोग दुखी होते हैं, ये रहस्य है। तो इसलिए गौरैया, तुम मेरे नगर में जाओ और वहां मुझे बताओ कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंगरेलियां मना रहे थे। अब उसी तरह का दृश्य है जैसा राजकुमार की मृत्यु से पहले का दृश्य था। लोग अपना खूब मजे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, विलास में लगे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे दो बच्चे सिकुड़े हुए पड़े हैं, सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहां से, चौकीदार बोला, और वे बारिश में भीगते हुए चल दिए। मैं वापस आ गई। ये दृश्य बहुत ही करुणा से भरा हुआ दृश्य था, और उसने राजकुमार को ये सब हाल बताया। मैं सोने से मढ़ा हूं, राजकुमार बोला, इसमें से स्वर्ण पत्र निकालकर मेरी निर्धन प्रजा में बांट दो। गौरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकालकर बांटती रही। अंत में राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनहूस दिखने लगा, क्योंकि उसकी मूर्ति पर जो स्वर्ण का पत्र चढ़ा हुआ था वो उतर गया। अब सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है, तो सिर्फ मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा, और जिसमें उसकी आंखें जो हैं वो भी नहीं है, उसकी तलवार पर लगा हुआ लाल भी नहीं है, तो किसी तरह का रत्न नहीं है, सिर्फ एक मूर्ति भर, एक सामान्य सी मूर्ति में लग रही है। तो ये जो मूर्ति है जिसमें ढंग से आंख भी नहीं बनी है, ये मूर्ति बहुत ही बदसूरत लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। तो अब इसका राजकुमार जो है वो मटमैला और मनहूस तो दिखने लगा, लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई थी और वे गलियों में खेलने लगे थे, यानी उनमें सुख का संचार हुआ था और वे सुखी होने लगे थे। और उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा, मौसम बदलने लगा, सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी, छज्जों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे, सभी फर के ओवरकोट पहनकर निकलने, बहुत जाड़ा पड़ने लगा। बेचारी नन्ही गौरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि उसे वह छोड़कर नहीं जा सकती थी। अंत में उसे लगा कि जब अब उसके दिन करीब है, दिन करीब होना यानी मृत्यु का निकट होना, अब उसके परों में केवल इतनी शक्ति शेष थी कि वह राजकुमार के कंधों पर तक एक बार उड़ सकती थी। अलविदा राजकुमार, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर अब तुम मिस्र देश जाने के लिए तैयार हो। मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसने राजकुमार को चूमा और मरकर उसके पैरों के पास गिर पड़ी। इसी समय मूर्ति के अंदर से कुछ आवाज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो, यानी जो राजकुमार जो पत्थर का है, उस राजकुमार का हृदय जो है वो फट गया है, वो कितना दुखी है। तो ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया है। वास्तव में मूर्ति के अंदर का जस्ते का दिल चटक गया था, जस्ते का दिल था उसका। और इसका कारण जो था क्या बताया गया है, इस समय पाला गजब का था, लेकिन उसके हृदय के चटकने का कारण पाला नहीं था। आप भी जानते हैं उसका हृदय जो टूटा था, इसलिए टूटा था कि उसकी जो एकमात्र मित्र थी, जो उसके नगर के जो लोग हैं उनका दुख दर्द करने में एक माध्यम का की भूमिका अदा कर रही थी। अब वो जो चिड़िया है, जो गौरैया है, वो अब मर गई है। अगले दिन क्या हुआ? दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वे वहां से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितनी भद्दी लग रही है ये प्रतिमा। अब तो चूंकि उस पर जो भी कीमती वस्तुएं थी, उसके जो कीमती पत्थर थे, उसका जो सोने का पत्र था जो उसकी मूर्ति पर, वो सब उतर गया है, तो वो बहुत बदसूरत लग रहा है। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। उसकी तलवार से लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब हैं और उसका सोना उतर गया है। ये तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम होता है। यानी पहले तो ये राजकुमार था, इसकी आंखों में कीमती नीलम लगे हुए थे, इसकी तलवार की मूंठ पर लाल लगा हुआ था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। सोने का पत्र जो उसके पूरे शरीर पर चढ़ा हुआ था वो भी नहीं है, तो अब तो ये बिल्कुल पत्थर का भिखारी लग रहा है। अब ये राजा या राजकुमार नहीं लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर का भिखारी। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया ना मरने पाए। सदस्यों ने फौरन नोट किया और उसके बाद उन्होंने मूर्ति हटा ली। चूंकि अब वह सुंदर नहीं, अतः इसका कोई उपयोग नहीं है, नगर के एक सुप्रसिद्ध कला विज्ञ ने कहा। यानी जो कलाकार लोग हैं, जो कला की जानकारी रखते हैं, जो कला का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने भी कला को सिर्फ सुंदरता में, ऊपरी सुंदरता में खोजा। उसके बाद उन्होंने मूर्ति भट्टी में गलाई और कॉरपोरेशन की बैठक में यह प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए। यहां पर एक दूसरी मूर्ति होनी चाहिए। मेयर ने कहा, मैं समझता हूं मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। नहीं, मैं समझता हूं मेरी, हर एक सदस्य ने कहा, और वे बराबर झगड़ते रहे। लोहा गलाने के कारखाने में मिस्त्री ने कहा, कैसा अचरज है कि टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है। उसने एक कूड़े खाने में उसे फेंक दिया। वहीं गौरैया की लाश भी पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा, मेरे लिए नगर की दो सबसे मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। देवदूत वह जस्ते का दिल और गौरैया की लाश ले आया। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा, मेरे स्वर्ग की डालों पर यह गौरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। यानी इतने अच्छे काम राजकुमार और गौरैया ने मिलकर किए कि जो सामान्य लोग थे, जो सत्ता के लालची लोग थे, उन्हें वह दृष्टि नहीं मिली हुई थी जिससे वो ये देख पाते कि इन दोनों ने कितने अच्छे काम किए हैं। हमारी जो प्रजा है उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को सुखी करने का कार्य किया है। उन्होंने सब सिर्फ यह देखा कि अब इस मूर्ति पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये सुंदर प्रतीत हो रहा है। उन्हें ये राजकुमार की प्रतिमा ऐसी लग रही थी जैसे ये पत्थर का भिखारी हो। यानी उन्होंने सिर्फ ऊपरी सुंदरता देखी, लेकिन ईश्वर ने और ईश्वर के देवदूतों ने राजकुमार और गौरैया की आंतरिक सुंदरता, उनके कर्मों की सुंदरता देखी, और इसीलिए ईश्वर ने ये कहा कि ये जो तुम ये दो सबसे मूल्यवान वस्तुएं लेकर आए हो, ये बिल्कुल सही चुनाव है तुम लोगों का। उन्होंने देवदूतों से कहा, और इनके काम इतने अच्छे हैं कि मेरे साथ ये स्वर्ग में हमेशा यहीं पर रहेंगे, निवास करेंगे। तो शिक्षार्थियों, आपने सुना कि किस तरह से ये कहानी हमें अच्छे काम करने का संदेश देती है, और साथ में हमें ये संदेश देती है कि हम अपनी बाहरी सुंदरता, या कहीं भी किसी और की भी बाहरी जो सुंदरता है, सिर्फ उससे आह्लादित होकर ही उसे महत्व न दें। हम यह भी देखें कि उस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। यदि व्यक्ति सुंदर है लेकिन कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसकी सुंदरता का कोई भी अर्थ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने कर्म बेहतर करें, सुंदर करें और अच्छे करें, समाज के लिए कुछ उपयोगी काम करें। और इस सब के लिए क्या जरूरी है कि हम खूब मेहनत करें। अभी आप लोग सब शिक्षार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ शायद कुछ काम भी कर रहे हैं, तो हम जो भी काम करें, वो काम कितना भी मामूली सा लगता हो, लेकिन हम उस काम को पूरे लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी रुचि से करें। अगर हम खुश होकर कोई भी काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा भी होता है, और अगर वो काम हमने किसी और के लिए किया है तो उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर वही काम हम बहुत दुखी होकर और बहुत तनक मिजाज बनकर हम करते हैं तो वो काम तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारा आधा ध्यान अपने ऊपर ही लगा होता है कि हम गुस्सा हैं, हमसे ये काम क्यों कराया जा रहा है। लेकिन अगर हम अच्छे से काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, तो यकीन जानिए हमें दूसरों से भी एक अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और हमारा दिन भी अच्छा रहता है, हम खुद भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इस तरह से हमारी आदतें भी बनती जाती हैं, और यही आदतें आगे चलकर हमारा जो चरित्र है उसे परिभाषित करती हैं, हमारा चरित्र कैसा हो। तो जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हम अपने लिए ही नहीं, हम समाज के लिए भी हमारा जो अस्तित्व है वो उपयोगी सिद्ध होगा। और मैं समझती हूँ कि आपके परिवार को, आपके समाज को आप पर गर्व होगा, और मुझे लगता है कि ये तो एक अंतिम लक्ष्य जैसे है कि हम अपने जीवन को सफल कर सकें, हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा, तो हम इस तरह से सोचें। तो इस सब इन सब बातों पर विचार करने के लिए इस कहानी ने भी हमें एक नई दृष्टि दी है। तो अगर आप चाहें तो इस कहानी को एक बार फिर से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि हम इस कहानी पर बेहतरीन ढंग से व्याख्या कर सकें, विश्लेषण कर सकें और आप तक पहुंचा सकें कि किस तरह से ये कहानी अपनी मूल संदेश की ओर बढ़ती है। अगर हम कहानी के विभिन्न तत्वों पर बात करते हैं तो हमने कथा वस्तु तो हमने जान ही ली है, अब सब भी भली भांति परिचित हो गए हैं कि इस कहानी की कथा वस्तु क्या है। हम चरित्र चित्रण पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस कहानी में, इसका जो कहानी का शीर्षक है वो अपने आप में बताता है कि जो मुख्य चरित्र है वो क्या है, राजकुमार। और ये राजकुमार कौन है, ये सुखी राजकुमार है, ये इसका मुख्य पात्र है। और इसके अलावा इसका मुख्य पात्र एक और प्राणी है, और वो प्राणी कौन है, वो है नन्ही गौरैया। बिल्कुल सही। तो ये दो जो चरित्र हैं हमारे, ये इस कहानी के मुख्य चरित्र हैं, क्योंकि पूरी कहानी इन दोनों चरित्रों के ही चारों तरफ दौड़ रही है, घूम रही है। तो इसमें आप खुद विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से हमारा ध्यान अगर हम राजकुमार के चरित्र पर लगाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये राजकुमार किस तरह का व्यक्ति था। तो राजकुमार जब सचमुच राजकुमार था, यानी जब वो जीवित था, तब वो दूसरी तरह का व्यक्ति था, वो सुख की खोज में रहने वाला व्यक्ति था और अपने सुख को ही सबसे ऊपर मानने वाला व्यक्ति था। उसे किसी और के सुख से, दुख से, किसी भी तरह से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन यहां पर बात हो रही है उस सुखी राजकुमार की प्रतिमा के बारे में। जो मुख्य पात्र है हमारी कहानी का, वो सुखी राजकुमार की प्रतिमा है। और जब हम जीवित राजकुमार और प्रतिमा बनी हुई जो राजकुमार की राजकुमार है, जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी सोच में, इनके सोचने के तरीके में बहुत ज्यादा विरोधाभास है, बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कंट्रास्ट है, बहुत अलग है। जीवित राजकुमार अलग तरह का था और ये प्रतिमा बनी हुई बना हुआ जो सुखी राजकुमार है ये बिल्कुल अलग है। जीवित राजकुमार चाहता तो अपने नगर के लोगों का सुख दुख जानने का प्रयास कर सकता था, क्योंकि उस समय वो जीवित था, उसमें क्षमता थी अपने लोगों की सहायता करने की, क्योंकि उसके पास धन भी था, उसके पास शक्ति भी थी, तो हर तरह से वो अपने नगर के लोगों का जीवन सुखमय बना सकता था। लेकिन अफसोस कि उसने ऐसा नहीं किया। इसी के बिल्कुल विरोधाभास में जब सुखी राजकुमार प्रतिमा के रूप में परिवर्तित होता है, जब वो मर जाता है, मृत होकर जब वो प्रतिमा के रूप में आता है, तब उसके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। हालांकि ये काल्पनिक है, क्योंकि प्रतिमा कैसे सोच सकती है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन जो लेखक है उनका जो मूल संदेश है वो हम तक पहुंचना है, उसी के लिए यहाँ पर उन्होंने राजकुमार की प्रतिमा को बिल्कुल मानव के रूप में दिखाया है कि सिर्फ वो सिर्फ गतिशील नहीं है, अन्यथा वो उसमें भावनाएं हैं, उसमें संवेदनाएं हैं, वो महसूस कर सकता है और लोगों के सुख दुख। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर सुखी राजकुमार को रखा है। और ये राजकुमार आप देखिए कि कितना अधिक संवेदनशील है, उसे इस बात का भली भांति एहसास है कि एक गरीब औरत इतनी दूर बैठी हुई वहां एक वस्त्र जो है उस पर फूल काट रही है, उसके हाथ छिले हुए हैं, उसका बेटा बीमार है और उसके पास उस अपने बच्चे के लिए फल खरीदने के भी पैसे नहीं है। प्रतिमा के रूप में इतनी ऊपर बैठा हुआ ये राजकुमार इतनी दूर स्थित उस छोटी सी कुटिया की इस स्त्री को देख पा रहा है, उसका दुख तक समझ पा रहा है। यानी जो सिर्फ दिख रहा है सिर्फ वो नहीं देख पा रहा, सिर्फ वही नहीं देख पा रहा है, बल्कि उसका दुख भी वो भली भांति समझ पा रहा है। तो इतना अधिक वैषम्य, इतनी अधिक विषमता राजकुमार के जीवित और मृत होने के बाद इन दोनों चरित्रों के बीच में आप देख सकते हैं। यही प्रतिमा जो है वो गोरैया को माध्यम बनाकर उस कलाकार के लिए एक अपनी आंख निकालकर नीलम, जो उसका आंख का नीलम है, उसे उसके पास भिजवाने का वो कार्य करता है। साथ में जो लड़की है जिसका सामान नाले में गिर गया है उसको वो अपनी दूसरी आंख तक देने के लिए तैयार है, उसे दूसरी आंख वो भिजवा देता है। ये उदाहरण एक तरह से हमें यह बताते हैं कि राजकुमार प्रतिमा के रूप में परिवर्तित होने के बावजूद मानवीय संवेदनाओं का जो ज्वार है, जो इतना अधिक उफान है उसके अंदर, वो उसे बहुत ही उत्कृष्ट मानव की के वर्ग में, श्रेणी में खड़ा कर रहा है। तो देखिए आप भली भांति इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से उसका जो चरित्र है वो पूरा उलट फेर हो गया है। जीवित राजकुमार किसी और रूप में था और ये मृत राजकुमार की जो ये प्रतिमा है ये बिल्कुल विपरीत है, बल्कि कह सकते हैं कि इसका एक तरह से उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शिक्षार्थियों कि ये मुख्य चरित्र जो सुखी राजकुमार का चरित्र है उसमें संवेदनशीलता बहुत अधिक है। और दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि उसने बाहरी सुंदरता की अपेक्षा आंतरिक सुंदरता या कहें कर्मों की सुंदरता को अधिक महत्व दिया। उसके पास उसकी आंखों के स्थान पर नीलम लगे हुए थे, कितने कीमती पत्थर थे। अगर हमारे पास कोई कीमती पत्थर होता है तो हम ऐसे ही थोड़ी ना किसी को दे देते हैं। एक सामान्य से मानव की प्रवृत्ति आप बताइए ऐसी ही होती है। लेकिन इस प्रतिमा ने अपनी आंखों के स्थान पर लगे हुए नीलम बिना कोई कुछ सोचे हुए विचारे हुए बहुत तत्परता से उसने गौरैया को निवेदन किया कि वो इन दुखी लोगों के दुख दूर करने के लिए इन नीलम को उन व्यक्तियों को वो दे दे। इतना ही नहीं, जब उसने देखा, जब गौरैया की आंखों से जब उसने देखा, जब गौरैया ने उसे बताया कि किस किस तरह से उसके नगर में लोग दुखी हैं, तो उसने गौरैया को कहा कि मेरे शरीर पर मैं जो सोने के पत्र का बना हुआ हूँ, मुझ पे जो सोना चढ़ा हुआ है, उसका एक जो पूरा परत चढ़ी हुई है, तुम इसे उतार कर इन लोगों में बांट दो। यानी मैं प्रतिमा के रूप में खूबसूरत ना लगूं, उस अगर मैं खूबसूरत नहीं हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं खूबसूरत लगता रहूं लेकिन मेरी प्रजा जो है, मेरे नगर के लोग हैं, वो दुखी रहें, तो मेरा हृदय जो है वो फट जाएगा। मैं इतना दुख अपने लोगों का, इतना सारा दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि गौरैया तुम इन लोगों के दुख दूर करो, और उसके लिए मेरे शरीर पर जितना सोना लगा हुआ है तुम सब उतार लो। ये कीमती पत्थर हैं, ये हमने दे दिए हैं, ये जो तलवार की मूठ पर लगा हुआ लाल है, ये भी हमने किसी व्यक्ति को मदद के तौर पर हमने दे दिया है। तो इस तरह से आप शिक्षार्थियों इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि जो राजकुमार है उसने वास्तविक सुंदरता का जो बोध है उसने उसका एहसास किया था, और उसे ये महसूस हुआ था कि ये जो ऊपरी सुंदरता है ये किसी काम की नहीं है अगर हमारे कर्म जो हैं वो सुंदर नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपने शायद पापों का प्रायश्चित भी करना चाहता था। उसे लगता था कि जब वो जीवित था तो उसे ये सब काम करने चाहिए थे। तो इस तरह से हमारा जो ये मुख्य चरित्र है सुखी राजकुमार का, ये बहुत ही संवेदनशील है, अपने नगर के प्रति उनके सुख दुख को लेकर ये बहुत ही चिंतित रहता है, उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, और बहुत ही त्याग से परिपूर्ण ये व्यक्ति है ये प्रतिमा जो है। और ये इसका इसने अपनी आंख जिनसे ये देखता था वो नीलम भी इसने अपने लोगों के सुख के लिए त्याग दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राजकुमार का जो चरित्र है वो हर रोज जो है वो निखरता जा रहा है। तो इस तरह से इस प्रतिमा में मानवता का संचार हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे जो दूसरे चरित्र है वो है गौरैया। और ये गौरैया आप देखेंगे कि जब शुरू में आप इसे इससे मिलते हैं तो आपको लगता है कि कितनी अकड़ वाली है, कितनी गर्व से भरी हुई ये गौरैया है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये जो देश है, जो ये नगर है, इसको इसकी सहायता करनी, इसको इसका स्वागत करना चाहिए था और इसने स्वागत नहीं किया। अभी ये नहीं समझ पा रही है कि ये गौरैया जो है कितनी छोटी, कि मैं कितनी छोटी सी हूँ, और मैं किसी भी तरह से ये अपेक्षा अगर करती हूँ नगर के लोगों से तो बहुत ही कह सकते हैं कि गलत होगा, या मेरे हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ही सोचती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कितनी घमंडी और अपने प्रति प्रेम से भरी हुई, आत्म प्रेम से भरी हुई ये चिड़िया है। और यहाँ पर इसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और इसकी अपेक्षाएं हैं कि ये मिस्र देश जाएगी और वहां पर इसे कितने सारे सुंदर दृश्य मिलेंगे, इसके साथी मिलेंगे, और वहां ये बहुत मजे से रहेगी। और बीच में एक थोड़ा समय जब तो इस आराम करने के लिए इस प्रतिमा के पास जब वो आती है तब भी उसमें इस बात का एहसास है कि कितनी अच्छी बात है कि इसका जो शयनागार है जहां ये सोएगी वो सोने का है, यानी नींद आए या ना आए, यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको अधिक महत्व देती थी। और आरंभ में इसमें इस तरह की भावना भरी हुई थी कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हूँ। और इसने विशेष रूप से बताया कि उसको बच्चों से बिल्कुल भी स्नेह नहीं है, यानी इसमें माफ करने की, क्षमा करने की जो शीलता है, जो आदत है, वो नहीं है। लेकिन यही गौरैया, जिस तरह से हम राजकुमार का चरित्र परिवर्तन आप देखते हैं, स्वभाव बदल रहा है, बदलता है इस कहानी के दौरान, उसी तरह से गौरैया का चरित्र भी बहुत अच्छे ढंग से निखरता हुआ चलता है। गौरैया राजकुमार की प्रतिमा की सोहबत में, उसकी संगति में वो देखती है कि एक, इस बात का अनुभव करती है कि एक प्रतिमा लोगों का दुख महसूस कर पा रही है, और धीरे धीरे उसमें भी ये परिवर्तन होता है। उससे राजकुमार के प्रति उसे दया भी आती है, उससे स्नेह भी होता है। और जब राजकुमार कहता है कि तुम मेरी आंख का नीलम निकाल कर दे दो, तो वो मना भी करती है। और जब दूसरी आंख, यानी दूसरी आंख का नीलम निकालने की बात होती है, तो वो कहती है कि मैं, कहोगे तो मैं एक रात और रुक जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी आंख का नीलम नहीं निकालूंगी, फिर तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगी। यानी इस तरह से गौरैया और राजकुमार में एक अंतरंगता का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। हम किसी, जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने मित्रों के साथ होते हैं, तो कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं अवश्य होती हैं जो हमारे संबंधों को घनिष्ठता प्रदान करती हैं। तो हमारा स्वभाव बिल्कुल ऐसे निश्चित रूप में नहीं रहता, हम निरंतर कहीं ना कहीं, हमें परिवर्तन, हमारी सोच में परिवर्तन, हमें पूरे विश्व को, समाज को देखने का जो नजरिया है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता चलता है। ये परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और कहें तो नकारात्मक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले बहुत अच्छा अच्छा सोचते थे और हमें लगता था कि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा करने की गुंजाइश है, आशाएं हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम बाद में इस बारे में निराश हो जाएं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले नकारात्मक थे, जैसे कि गौरैया थी, और उसके बाद हम सकारात्मक दृष्टि से हम दुनिया को देखने लगते हैं, जैसे गौरैया इस प्रतिमा को देखती है और उसकी हर बात का वो पालन भी करती है। क्योंकि राजकुमार का जो अनुरोध है वो इतना स्नेह से भरा हुआ है, इतना मित्रता के भाव से भरा हुआ है कि वो मना ही नहीं कर पाती है। और जब वो राजकुमार के कहने पर, जब वो इन लोगों का, उस स्त्री का या इस लड़की का या उस तरुण कलाकार का दुख दूर करने के लिए जब वो इन सभी जगहों की यात्रा करती, जब वो जाती है, तब वो देखती है कि सच में कितना दुख है। और कहीं ना कहीं वो कोशिश भी करती है, जैसे पहली दफा में ही जब वो देखती है कि उस स्त्री का बच्चा बुखार से बहुत ही पीड़ित है और बहुत ही छटपटा रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो अपने पंखों को हिलाकर हवा करने का प्रयास करती है। तो एक तरह से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से उसका स्वभाव जो है वो अच्छा, बेहतर बनता जा रहा है। अब उसे दूसरों की सहायता करने का मन कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं शिक्षार्थियों कि ये भाव या ये परिवर्तन राजकुमार की सोहबत की वजह से उसमें आया है। तो संगति तो बहुत असर करती है। तो यहाँ भी आपने देखा कि किस तरह से संगति का असर गौरैया पर हो रहा है। और यही गौरैया जब राजकुमार की दूसरी आंख का नीलम भी जब निकालकर वो उसके कहने पर उस लड़की को दे देती है, तो उसके बाद उसे लगता है कि अब राजकुमार का कोई भी नहीं है, अब वो देख नहीं पा रहा है, तो वो उसकी आंखें बनने का प्रयास करती है। वो अपनी आंखों से उसे सारी कहानियां, सारे अनुभव अपने बताती है, और एक तरह से वो कह सकते हैं कि वो राजकुमार की आंख बनती है। तो इस तरह राजकुमार के प्रति अपने स्नेह को सुरक्षित रखने के लिए ये गौरैया मिस्र देश जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर देती है। वो कहती है कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ इस राजकुमार की प्रतिमा को मेरी ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर वो बहुत उसका ध्यान रखती है, उसे बहुत सारी कहानियां सुनाती है, लेकिन राजकुमार के ये कहने पर कि सबसे अधिक रहस्य मानव के दुख दर्द में है, और तुम मेरे नगर में जाओ और देखो कि लोगों का क्या हाल है, और फिर वो लोगों का हाल राजकुमार तक पहुंचाती है। और जब राजकुमार अपने शरीर पर लगे हुए सोने के पत्र का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो उतार उतार कर वो सोने का पत्र लोगों को, बच्चों में वो बांट देती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गौरैया प्रेम के प्रति, समर्पण के प्रति और त्याग की भावना के प्रति वो इतनी अधिक निष्ठावान है, इतनी अधिक उसमें ये भावनाएं भरी हुई हैं कि स्वयं जब देवदूत वहां पर उस नगर की दो मूल्यवान वस्तुएं ढूंढने के लिए आते हैं, तो उसमें से वो राजकुमार के जस्ते का दिल और गौरैया की लाश लेकर जाते हैं। यानी यहाँ पर देवदूतों को भी भली भांति इस बात का भान हो जाता है कि गौरैया के कर्म जो है वो कितने बेहतरीन हैं, और कितनी अधिक सराहना उन्होंने की कि वे गौरैया को सबसे मूल्यवान वस्तु में से एक को वे चुनते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, गौरैया का ये चरित्र चित्रण है, और इससे हम ये बात भली भांति समझ पाते हैं कि अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं, अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी सोच किस तरह से बेहतरीन होती चलती है, किस तरह से हम बदलते हैं और अच्छे के लिए बदलते हैं, और किस तरह से हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र जो है वो उच्च शिखर तक, उत्कृष्ट तक वो बन जाता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये हमारे इस कहानी के दो मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण था। अगर हम बात करें हमारी समझ की कि हम इस कहानी के संवादों के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं, तो आप इस बारे में क्या विचार रखना चाहेंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें बहुत अधिक संवाद जो है उनका प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत छोटे छोटे संवादों का प्रयोग हुआ है, और ये संवाद जो है वो किसी भी कहानी में, किसी भी रचना में कथानक को विस्तार देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। क्योंकि एक हम किसी की कही हुई बात बताते हैं, और एक उसका हूबहू उसका उद्धरण वहां पर कि उसने ऐसा कहा, तो एक तरह से प्रामाणिक हो जाता है वह कथन कि उसने इसी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए ही ये बात कही थी। और इसीलिए कहानीकार जो है वो संवाद यहाँ पर किसी भी कहानी में रखते हैं। तो आप देखेंगे कि संवादों के माध्यम से हम राजकुमार और गौरैया का जो चरित्र है उसे भली भांति समझ पाते हैं। जैसे जब बिल्कुल शुरू में आप देखेंगे कि कहानी शुरू हुई थी, तो वहां पर गौरैया बहुत निराश हो रही है और कह रही है कि मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा, यानी शहर ने तो स्वागत नहीं किया है। और इस तरह से उसका उसकी सोच इस बात से पता चलती है कि जब वो कहती है कि इस प्रतिमा से क्या फायदा अगर ये वर्षा भी नहीं रोक सकती है, तो तो हमें गौरैया के चरित्र के बारे में पता चलता है। फिर वो कहती है कि प्यारे राजकुमार, यह तो मुझसे ना होगा। जब आंख के दूसरा नीलम भी उसको निकालने के लिए राजकुमार कहता है तो वो मना कर देती। तो इस तरह के जो संवाद है ये हमें बताते हैं कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, किस तरह से हमारे पात्रों का चरित्र जो है वो परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, ये हमें इन संवादों के माध्यम से पता चलता है। जब मेयर इस तरह से कहता है कि यह तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम होता है, तो हमें मेयर के बारे में भी पता चलता है कि कितना शुष्क प्रवृत्ति का स्वभाव का यह व्यक्ति है जो ऊपरी सुंदरता को ही सुंदरता मानता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये इस कहानी में प्रमुख रूप से जो संवाद थे उन पर हमने देखा कि ये संवाद छोटे हैं, बहुत ही संक्षिप्त हैं, सटीक हैं और हमारे पात्रों के चरित्र को बताने में, उसको हमारे सामने उजागर करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अगर हम बात करें वातावरण की तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पात्र हैं, उनकी स्थितियां हैं, उनके संवाद हैं और उन संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरह का वातावरण है उस नगर में। राजा है, राजतंत्र है और वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच खाई है। बहुत कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, इस तरह के यहाँ पर लोग हैं। ये आर्थिक आधार पर ये लोग बटे हुए हैं। और फिर हम यह भी देखते हैं कि यहाँ जो विलासी लोग हैं उनका किस तरह का रहने का किस तरह का तरीका है, गरीब लोग किस तरह की स्थितियों में रह रहे हैं, जलवायु किस तरह की है, वहाँ पर पाला पड़ रहा है, वहाँ बहुत ठंड है और किस तरह वहाँ पर जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी प्रतिमा बनाकर रखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर मुख्य रूप से किसी नगर का इस तरह से नाम लेकर नहीं कहा गया है, इसलिए नहीं कहा गया है कि लेखक का यह मानना है कि इस तरह की स्थिति, इस तरह के भाव किसी भी देश में, किसी भी समाज में हो सकते हैं। तो ये हम इस कहानी का वातावरण था शिक्षार्थियों। उद्देश्य पर हमने इसके आरंभ में ही बात की है, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, जो आपने संदेश समझा। हमने इस कहानी पर चर्चा की, कहानी के तत्वों पर बात की। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको इस कहानी को समझने में, इसका विश्लेषण करने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।